यूसुफ को तो नहीं देखा? इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ।
मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था।
था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
तुम्हें इससे क्या मतलब?
फली ने उसे मेरे सपोर्ट किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी। मुझसे भाग रहे थे? हाँ, मुझसे छुप रहे थे।
क्या हुआ? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? खुदा ना करे मेरे यूसुफ को किसी मुसीबत का सामना हो।
क्या हुआ नबी खुदा?
मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है लिया, मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है।
रस्सी से बांधा ताकि भाग न सको। तुम्हारे मालकों ने बताया था कि तुम भगौड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन भगौड़े पैरों को तोड़ दूंगा। मेरे चुंगल से भागना मुमकिन नहीं।
क्या हुआ बंदा खुदा? सबर करो, देखने दो।
पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे हाथ में दर्द हो गया।
बिना वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता। या भारी वजन उठाने से हो जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के काटे से।
काफले के पीछे पीछे चल रहा था, मुड़कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। ढूंढा तो पता चला कि उस कब्र के पीछे जा बैठा है। तंबी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक मेरा हाथ नकारा हो गया।
मारा तो तुम्हारा हाथ नाकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है? ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा? बनता है खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं, अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे थे?
भागा नहीं था, ये मेरी माँ की खबर है, सोचा आखिरी बार विदा कर।
गुलाम की कब्र का नामो निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये कब्र किसी गुलाम की माँ की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगाया ना। तुम्हें मालूम है अगर तुम भाग जाते तो मैं उसका क्या हशर करता? वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है?
मुझे कीना तोजी की तरबियत नहीं दी गई।
आफरीन है तुम पर। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा।
फिर तो मुझे नहीं मारेंगे।
इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा।
आप यक्ता परस्त हैं?
मैं मालिक इब्न ज़ार, इब्न क़ाइब, इब्न इस्माइल, इब्न इब्राहिम हूँ। इस्माइल ज़बीहुल्लाह के परपोतों में से हूँ। और तुम किसके फर्जंद हो?
मैं भी फर्जंदे।
किसके फर्जंद?
मैं फर्जंदे चाहूँ।
तो भैया बाप का नाम बताना नहीं चाहते?
बताया ना कि मैं फर्जंदे चाहूँ। मैं कल उसी कुएं में जहाँ आपने मुझे देखा पैदा हुआ, जिस वक्त कासिद हक मुझ पर जाहिर हुए।
तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर खुद को जाहिर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे माफ कर दो।
ठीक है, मैंने भी उसे माफ कर दिया।
शाबाश बेटा, अपनी मां की कब्र से विदा कर लो। अब हम रवाना हो रहे हैं, आमादा हो जाओ।
बताओ, क्या तुम्हें यूसुफ मिला?
नहीं, नहीं मिला बाबा।
ये आप लोग जख्मी कैसे हो गए?
अब बनी इसराइल में ना खैर और बरकत नजर आएगी और ना ही मेहर मोहब्बत के आसार। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि यूसुफ की जान के दरपे होने वाले भेड़िए एक दूसरे की जान के दरपे हो गए हैं। लावी, मैंने यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द किया था, अगर तुम न होते तो उसे हर किस सहरा नहीं बेचता। बताओ, तुमने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की?
यूसुफ के साथ क्या सुलूक किया है? आखिर क्या क्या है यूसुफ के साथ? बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। खुदा की लानत हो तुम पर। यूसुफ कहाँ है? जवाब दो, आखिर यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ?
बस करो लिया, बस करो।
चंद बातें गौर तलब हैं जो मैंने महसूस की हैं। पता नहीं आप लोगों ने महसूस की हैं या नहीं। अगर तूफान में रास्ता गुम ना कर बैठते तो हम यकीनन इस सिंध में नहीं आते, और अगर हमारे जानवर ऐन कुएं पर पहुंचकर रुक ना जाते तो हम भी वहां तवक्कुफ नहीं करते। अगर प्यास की शिद्दत ना होती तो पानी नहीं निकालते। इन तमाम वाकयात का रोनुमा होना यकीनन लुत्फ खुदाबंदी ही तो है कि यह गुलाम हमारे नसीब में आया ताकि हम इसके जरिए से मुनाफा हासिल करें। जो रोजी तुम्हारे नसीब की है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। तमाम असबाब अवामिल मुआविन मददगार बन जाते हैं ताकि जो कुछ भी परवरदिगार ने इंसान के मुकद्दर में लिखा है वो उस तक पहुंच जाए, और इस सफर में ये इब्रानी गुलाम हमारे नसीब में था।
मुझे निशाते ये दर्द मुझे मार डालेगा। मुझे इस दर्द से निशाते इश्तहारे बुजुर्ग मुझे निचाते इस दर्द से, मुझे चिजाते इश्तहारे बुजुर्ग मुझे निचाते। ये दर्द मुझे मार डाल रहा है। आए रात बहुत दर्द हो रहा है। रात इस दर्द में से चाहते थे तुम्हारे हाथों में शिफा है।
मैंने कुछ नहीं किया, सभी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा दबाने और सहलाने से दर्द खत्म हो जाता है।
लेकिन पहले मालिक ने भी बहुत कोशिश की और सहलाए भी बहुत, लेकिन कोई इफाका नहीं हुआ।
तुम आसमान को देख रहे थे, क्या तुम सितारा परस्त हो?
एक सितारा जो दिन के तुलू होते ही गायब हो जाए, क्या काबिले परस्तिश है?
इस हिसाब से तो चांद सूरज को भी नहीं पूछते हो, क्योंकि चांद दिन में और सूरज रात में गायब हो जाता है।
मेरा खुदा तो इन सब का खालिक है, खुदा अजली अबदी यकता बिहमता।
गोया तुमने इतनी छोटी सी उम्र में मेरे और कतमीर के खुदाओं से बेहतर खुदा का इंतखाब कर लिया है। खुदा भी ऐसा जो तुम्हें पसंद भी करता है और तुम्हारी दुआ कबूल भी करता है।
ये भी कोई खुदा हुआ? कितना तड़पा, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दर्द के उन चंद घंटों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तुमसे उस थप्पड़ के बाबत माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो यूसुफ, मुझे माफ कर दो।
अच्छा तमाचा था, अगर वो तमाचा तुम्हारी हिदायत का वसीला बने तो मैं इस पर राजी हूँ।
मैं इसी खत्ते का रिहायशी हूँ और रास्तों से बखूबी वाकिफ हूँ। मैंने हमेशा काफिलों की रहनुमाई की है, लेकिन इस मर्तबा गोया तुम हमारे रहनुमा बने हो।
हिदायत उसके हाथ में है, वो जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है उसे तारीकी और गुमराही में छोड़ देता है।
मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा कौन है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि इसके सिर्फ एक दुआ से कतमीर के हाथ को शिफा मिल गई। इसका रابطہ अपने आसमानी खुदा के साथ बहुत अच्छा है, शायद औलियाओं में से है।
लाजिम नहीं कि कतमीर के हाथ को शिफा मिल गई है तो वो औलियाओं में से हो। कल बताया तो था कि अगर यूसुफ उसे माफ कर दे तो वो शिफा पा लेगा।
और उस ख्वाब को क्या कहोगे? मैंने उसे देखा कि जहां जहां से वो गुजर रहा था वो खिता सरसब्ज और शादाब होता जा रहा था।
ख्वाब कोई पैमाना नहीं है। तुम खुदा यक्ता को नहीं पहचानते? तुम्हें खुदा यक्ता की मार्फत नहीं। किसी पर जुल्म करोगे तो वो सजा देगा, या इस दुनिया फानी में या उस जहान बाकी में।
यह खिता बहुत सरसब्ज और शादाब था। इस साल बारिश की कमी की वजह से यहाँ की फसलों को नुकसान का खदशा है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो कहत सबको अपनी लपेट में ले लेगा।
खुदावंद अपने बंदों पर बड़ा ही रहमदिल और मेहरबान है।
जनाब मालिक, कारवा के एक बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं है, मेरे साथ चलिए। काफी अरसे से बीमार है लेकिन आज बीमारी शिद्दत पकड़ गई है।
इसकी तबीयत ठीक नहीं। आखिरी सांसें ले रहा है, बचने की अब कोई उम्मीद नहीं।
तो अब क्या करना है? इसको इसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता।
इसके लिए घिसटने वाला तख्त तैयार करके तख्त को जानवर के साथ बांध दो ताकि कारवां के पीछे पीछे जरा फासले से चलता रहे।
आप ठीक हो जाएंगे, मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है।
कोई उम्मीद नहीं, मैं अब मरने वाला हूँ।
फिक्र ना करें, मैं आपके पास हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी दोनों खुदा के हाथ में है, मायूस ना हो।
बीमार के हमरा क्यों चल रहे हो?
बहुत काम, अगर सुनता ही नहीं।
मैं इन्हें यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता, मुझे इनके साथ रहने दीजिए।
इसकी बीमारी शदीद है, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते।
खुदा मदद करने वालों को पसंद करता है, आप मेरी फिक्र मत करें।
इसका ख्याल रखना।
फली, ये बुजुर्गवार ठीक हो गए, देख रहे हो, इन्हें दोबारा जिंदगी मिल गई।
तुम ठीक हो गए?
देख रहे हो कि ठीक हूँ।
तुमने इसे सही किया है ना?
मैं?
उसी तरह जैसे कदमीर को शिफा दी थी।
खुदा शिफा देता है, मैंने तो सिर्फ दुआ की थी।
जनाब मालिक, आइए और आकर देखिए, बीमार शिफायाब हो गया। आइए और आकर देखिए।
तुम बीमार के साथ रहने पर इस कदर बजित क्यों थे?
मैं भी आपकी तरह रहनुमा हूँ, जो कारवां के तमाम अफराद को सही और सलामत मंजिल मकसूद पर पहुँचाए।
क्या हुआ है? तुम ठीक हो गए?
यूसुफ ने कहा तख्त से नीचे उतर आइए और पैदल चलिए, और मैंने भी वैसा ही किया। अब मैं ठीक हूँ। मेरी ये जिंदगी यूसुफ की मरहूम मिन्नत है। अगर इसने मेरा ख्याल न रखा होता तो यकीनन मेरा काम तो तमाम हो चुका था।
थोड़ा सा ख्याल रखना ये तो कोई भी कर सकता है, मैंने कुछ खास नहीं किया।
ये शख्स मौत की दहलीज पर था, इसके बचने की कोई उम्मीद न थी।
मुझे नहीं पता तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है, लेकिन बस इतना जानता हूँ बहुत कुदरतमंद है और तुम्हें भी बहुत पसंद करता है।
चले रवाना हो।
मैंने देखा कि तुम मेरे हक में दुआ कर रहे थे, बस उसी दुआ ने मेरी हालत बहाल कर दी।
हरकत करें।
یہ بارش یوسف کے وجود بابرکت کی وجہ سے برسی ہے۔
سرزمین مصر ہے، آدھے دن سے زیادہ کا راستہ نہیں، بہت جلد سرحدی پہرے داروں تک پہنچ جائیں گے۔
مگر مجھے یہاں تک تو کوئی پہرے دار دکھائی نہیں دیا۔
شام، کنان و حجاز اور دیگر علاقوں میں طوائف الملوک کی رائج ہے اور کوئی بھی مشخص حدود یا سرحدیں نہیں رکھتے ہیں، لیکن سرزمین مصر ایک متمدن خطہ ہے۔ یہاں ترقی یافتہ جدید نظم و ضبط کے تحت قوانین کی پاسداری، حکومت کی تعینات کردہ سپاہ نظر آئے گی۔ فرعنہ مصر کا شمار دنیا کے طاقتور ترین حاکموں میں ہوتا ہے۔
خدایا، اس دیار غیر میں میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔
اور یہ رہی مصر کی سرحد۔
خدایا، میں خود کو تجھے سونپتا ہوں۔ اس عجیب و غریب سرزمین پر میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔
رک جائیں، آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟
بابل سے مالک ابن زار ہوں۔
ٹھیک ہے، جا سکتے ہیں۔
چلو،
کیا یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں؟
ہاں بالکل جانتے ہیں، ہم نے سالوں تجارت کی غرض سے مصر کا سفر کیا ہے۔ مصر کافی قدیم اور متمدن سرزمین ہے، شام اور کنعان میں بہت زیادہ فرق ہے۔
عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔
ہاں، یہ سربند پہن کر ان کے چہرے دار سانپ کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ خطہ سرزمین سانپ کے نام سے معروف ہے۔ پہلے مصر معتقد ہے کہ ایک بہت بڑا اجدہا سرزمین مصر کا محافظ ہے۔
ہمارے پاس بھی بھیڑ بکریاں ہیں، لیکن اتنی نہیں، یہ لوگ تو بہت امیر ہیں۔
یہ تمام کسان اور سرسبز لہلہاتے کھیت یا تو کلن ان کے خدا آمون اور اس کے معبود کی ملکیت ہیں، یا پھر مطلقاً فرما روائے مصر آمون ہوتا کی۔ تمام اہل مصر انہی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی کچھ نہیں۔
یعنی مصر کے خدا گائے اور بھیڑے بھی رکھتے ہیں؟
ہاں، ان کے نزدیک یہ تمام چیزیں خدا کے لیے ہیں۔
خدا نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے، لیکن اپنے لیے نہیں۔ یہ اتنی ساری بلیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟
اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے، یہ شہر کا معبود ہے، مرکزی شہر کا معبود۔ یہاں کے لوگ بلی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں تو بلی پرست نہیں ہوں۔ اب سب کے خدا تو تمہارے خدا کی طرح بے عیب اور بے نظیر نہیں ہوتے ہیں نا؟
جناب مالک، اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے جو کھانا بھی کھاتی ہے،
زیادہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، اس سرزمین کے خداوند تو مرتبے، بھیڑ بکریاں، حتیٰ کہ زن و فرزند بھی رکھتے ہیں۔
تو گویا مصر میں یکتا پرستی نہیں ہے؟
بالکل نہیں، بلکہ یکتا پرستی جرم ہے، اور تم بھی یکتا پرستی کے متعلق کبھی کوئی بات نہ کرنا، اور نہ ہی ان کے خداؤں کی اہانت کرنا، لوگ برداشت نہیں کریں گے۔
یہی نیل ہے؟
یہ تو نیل کا بچہ ہے، یعنی نیل کی ایک شاخ۔ نیل سے کہیں بڑی خوشبو اور مقدس ہے۔
مقدس کیوں ہے؟
کیونکہ اہل مصر کی ترقی کا تمام دار و مدار اسی دریائے نیل پر ہے۔ اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو مصر بھی نہیں ہوتا۔ نیل کا ابتدائی سرا آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ صرف خداؤں کی رسائی اس ابتدائی سرے تک ہے۔ یہ دریا جنوب سے شمال کی جانب بہتا ہے اور بحیرہ روم میں جا کر گرتا ہے۔ ہم اس وقت شمال سے جنوب کی طرف قدیمی شہر تبس کی جانب جا رہے ہیں۔ شہر تبس خدائے آمون کا شہر ہے۔ نیل کے اس طرف دنیا غرب ہے، مردوں کی دنیا۔ وہ بڑے بڑے اہرام فرعونۂ مصر کے مقبرے ہیں۔ اس جگہ کو منفس کہتے ہیں، جہاں سے دریائے نیل مختلف شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ اگر یوسف کو کسی ثروت مند کے ہاتھوں فروخت کیا جائے تو نہ صرف یوسف کو نعمت اور خوشحال زندگی ملے گی، بلکہ بے شمار معلومات ہمارے بھی ہاتھ آئے گا۔
کاش ایسا ممکن ہوتا کہ یوسف کو نہ بیچیں۔
نہ بیچیں تو کیا کریں؟ ہم جنوب کی سمت سفر کر رہے ہیں، اور ہمارے دائیں طرف مردوں کی دنیا غرب واقع ہے۔ وہ جہاز اجساد کے حمل و نقل کے لیے مخصوص ہے۔ نیل کے اس طرف جہاں ہم اس وقت ہیں قدیم شہر تبس واقع ہے۔ شہر تبس اہل مصر کے خداؤں کا شہر ہے، اور فرمان روائے مصر آمون حوضہ کی حکومت کا مرکز یہی شہر ہے۔ اس شہر تبس کو خدائے آمون کا شہر بھی کہتے ہیں۔ وہ دیکھو، دور سے ہی تبس دکھائی دے رہا ہے۔
یہ رہا تبس شہر، 100 دروازوں والا شہر۔
100 دروازے؟
10 دروازوں سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو مسافر بھی تبس شہر کو دیکھتے ہیں وہ اپنے شہر واپس جا کر اسے 100 دروازوں والے شہر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
بابل سے مالک نزار ہوں۔
क्या हुआ, सो क्यों नहीं रहे?
डर है कि भाग ना जाऊं। तुम कौन हो? आखिर तुम क्या हो?
इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं
यूसुफ। تمہارے خدا کے مقابلے میں میرے خدا مجبور و لاچار ہیں۔ تم مجھے اپنے خدا کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ تمہارا خدا حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ اس کی رسائی ممکن ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم آسانی سے اس کے ساتھ رابطہ برقرار کر لیتے ہو، وہ بھی تمہاری آواز کو سنتا ہے اور تمہاری دعا قبول کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم دیگر انسانوں سے مختلف ہو، تم میں ایسی غیر مری طاقت ہے کہ جب جو چاہو کر گزرتے ہو۔
لیکن ہر وہ کام جس میں میرے خدا کی رضا شامل ہو۔
یہ تمہارا خدا کیسا ہے جو ہر جگہ تمہارا محافظ ہے؟
آپ نے بخوبی اس کے اوصاف بیان کیے ہیں۔
میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایمان لے آؤں۔
آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، تجدید ایمان کی ضرورت نہیں۔
میں ایمان رکھتا ہوں؟
آپ نے میرے خدا کو حاضر و ناظر جانا، اسے ہر کام پر قادر سمجھا۔ وہ خدا آپ کے خیال میں ہر پکار اور دعا کا سننے والا ہے۔ آپ نے اپنے خداؤں کو ضعیف و ناتواں کہا، یہی عین ایمان ہے۔
یعنی تو کیا میں اس وقت تمہاری طرح یکتا پرست ہوں؟
آپ تو اسی وقت یکتا پرست ہو گئے جب قدمیر کے ہاتھ کو شفا ملی۔ میں آپ کے کیے گئے سوالوں سے ہی سمجھ گیا تھا۔
آخر تم کون ہو؟ کیوں نہیں بتاتے؟ بظاہر ایک غلام لیکن در پردہ جیسے تم ہمارے آقا و مالک ہو۔ تمہیں خدا یکتا کا واسطہ، بتاؤ۔
قسم نہ دے کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اتنا بتا دوں کہ یہ تمام واقعات خدا کے ارادے سے وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور وہ یوسف کو بھی ایک بڑے مقدس ہدف کے تحت یہاں مصر لایا ہے۔
کون سا ہدف؟ کم از کم یہی بتا دو۔
نہیں جانتا، آئندہ معلوم ہو جائے گا۔
میں مالک کو تمہیں فروخت نہیں کرنے دوں گا، میں اسے روکوں گا۔
وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے، اگر وہ مجھے غلام دیکھنا پسند کرتا ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ جائیں، جا کر سو جائیں اور میری غلامی کی فکر نہ کریں۔
اب بھی اپنے باپ کا نام بتانا نہیں چاہو گے؟
بتایا تو، میں فرزند چاہ ہوں۔
وہی کنواں جس سے تمہیں باہر نکالا تھا۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، کبھی نہ کبھی تو پتہ چل ہی جائے گا۔